संतप्त मानस शांत हूं, जिनके गुणों के गान से वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। ऐसा नक्की किया है शांति जी के आग्रह से कि कल से दो प्रवचन होंगे मेरे, तीन दिन तक जो अपना फंक्शन है ना, उन तीन दिन तक दो होंगे और उसमें कंटिन्यूशन विषय वाला न चलकर प्रवचन सार के विधान पर होंगे। चाहे उसे ये कह लो कि तीन हिस्सों में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणान योग सूचक चूल का एक एक पर दो दो व्याख्यान होंगे, क्योंकि जब विधान होगा तो एक दिन में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पूरा होगा, दूसरे दिन में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन पूरा होगा और तीसरे दिन में चरणानियोग सूचक चूल का पूरी होगी। तो वहां विधान में अपन पाठ पढ़ेंगे पूरा आद्योपांत, और इधर अपन प्रवचनों में पूरे अध्याय को आधार बनाकर और जो अपन ने पूजने वगैरह विधान की लिखी हैं उन सबको आधार बनाकर दिन में दो दो प्रवचन करेंगे। अभी ये संकल्प किया है, अब क्या पूरा पड़ता है और भविष्य में उसका क्या परिणाम आता है वो अपन देखेंगे। मोटानी जी, ये तबीयत अच्छी है ऐसा मान करके ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और है भी अच्छी। मैंने जो वो तकलीफ थी ना वो तो है ही नहीं, और जनरल हेल्थ में भी अच्छा लगता है, स्फूर्ति रहती है, ऐसे कोई कमजोरी नहीं लगती है, ऐसा सब बिल्कुल ठीक लगता है। तो करो भाई, कहते हैं अभी अपन को सिर्फ दो गाथाओं का अर्थ करना है, फिर आज ये करेंगे, कल से जो बाद में करेंगे ना तीन दिन बाद, फिर वो अपने 139वीं गाथा लेंगे। पढ़ो ऐसे गाथा 37 और 38।
जदतेण भपदेशा तदपदेशा हवन्ति सेसाणम् अपदेशो परमाणु तेण पदेश सुब्बभो भणिदो समो दु अपदेशो पदेश मेतस्य दब्बजादस्य बदिबद दोसो बट्टदि पदेश मागास दब्बस्त। जिस तरह परमाणु से है नाप गगन प्रदेश का, बस उस तरह ही शेष का परमाणु रहित प्रदेश से उद्गलाणु मंद गति से चले जितने काल में रेक गगन प्रदेश पर परदेश विरहित काल वह।
कोई भी वस्तु होती है उसमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ये चार चीजें अवश्य होनी चाहिए, होती ही हैं। इसे न्याय की भाषा में स्वचतुष्टय कहते हैं। हर एक का एक वो अनंत चतुष्टय होता है, वो अलग है, और ये स्वचतुष्टय और परचतुष्टय। प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्थि रूप है, अस्थि रूप है माने है, अकेला है कहो उसका अर्थ ही ये है कि अस्थि रूप है, और परचतुष्टय की अपेक्षा नास्ति रूप है माने दूसरे द्रव्य के अलग स्वचतुष्टय हैं और अपने अलग स्वचतुष्टय हैं। तो दूसरे द्रव्य के अपने परचतुष्टय कहलाए ना। तो एक धर्म ऐसा है कि वो परचतुष्टय को स्वचतुष्टय में प्रवेश नहीं करने देता, इसे अपन नास्ति कहते हैं कि भाई नास्तित्व धर्म है, ये नहीं है। तो जो स्वतत्वस्थ होता है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, तो इसमें जो क्षेत्र है संत जी क्षेत्र है वो प्रदेश की अपेक्षा है, वो काल है वो पर्याय की अपेक्षा है, वो भाव है वो गुणों की अपेक्षा है, वो द्रव्य तो पूरी वस्तु है। तो अपन जब बोलते हैं ना कि आत्मा का हम स्वरूप बताओ, किसी द्रव्य का स्वरूप बताओ, तो कहते हैं जैसे आत्मा असंख्यात प्रदेशी, अनादि अनंत, अनंत गुणों का अखंड पिंड, ऐसी एक चिन्मात्र वस्तु है। तो ये अपन पूरी बात हुई बात, मैंने हमने पूरे आत्मा का कथन कर दिया। इन चार चीजों की तरफ से हमने आत्मा को या किसी भी द्रव्य को समझ लिया तो समझ लो कि हमने वो पूरी वस्तु समझ ली। तो वो यही बता रहे हैं इन गाथाओं में जो पीछे चले आ रही हैं और यहां चले आ रही हैं, कि भाई आकाश के अनंत प्रदेश हैं, फिर लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। तो ये प्रदेश क्या है? क्या आकाश का अथवा द्रव्य का वो सबसे छोटे से छोटा हिस्सा जिसमें को एक पुद्गल का परमाणु, शुद्ध पुद्गल का परमाणु, स्कंद नहीं, जितनी जगह घेर है उतनी जगह को प्रदेश कहते हैं। तो प्रदेश की परिभाषा परमाणु से की गई है, इसमें लिखा है परमाणु से, जिस तरह परमाणु से है नाप गगन प्रदेश का, पहली पंक्ति है ना कि परमाणु से प्रदेश का नाप होता है। हम आकाश तो अखंड है तो इसके कितने हिस्से को हम एक प्रदेश कहें, तो कहते जितने हिस्से में पुद्गल का एक परमाणु ठहरे उतने हिस्से को हम प्रदेश कहते हैं। तो प्रदेश का नाप हमने पुद्गल परमाणु से किया। जिस तरह परमाणु से है नाप गगन प्रदेश का, और फिर हमने कह दी वो अनंत, तो अनंत परमाणु अलग अलग जैसे जहां ठहर जाए उतनी जगह उतना आकाश है। फिर कहते हैं बस उस तरह ही शेष का परमाणु रहित प्रदेश से, अब बाकी के द्रव्यों का कैसे गिने? तो हमने कहा ना जितना एक परमाणु घेरे वो एक प्रदेश है, तो अब बाकी के हम जीव का कह देते हैं। तो कहते हैं अब परमाणु की जरूरत नहीं है, अब तो अपन ने प्रदेश का नाप निकाल लिया ना, तो अब बस परमाणु रहित प्रदेश से उसकी बात कर लो कि असंख्यात प्रदेश ही है, असंख्यात प्रदेश है आत्मा के। अब असंख्यात असंख्यात प्रकार के होते हैं, छोटे से छोटा असंख्यात और बड़े से बड़ा असंख्यात। छोटे से छोटा असंख्यात कौन है? कि जो संख्यात के बाद जिसमें एक जोड़ दो तो जो संख्या होगी वो छोटे से छोटा संख्यात। और बड़े से बड़ा कौन? कि जिसमें एक जोड़ने से अनंत हो जाए वो सबसे बड़ा संख्या। और बीच में कितने हैं बोलो? बीच में असंख्यात जो हैं वे कितने प्रकार के हैं? असंख्यात असंख्यात प्रकार के, क्योंकि जितने हैं वो उतने सभी है ना। तो अब वो प्रश्न खड़ा होता है कि तुम आत्मा को बता रहे हो कि असंख्यात प्रदेश है, तो वो कौन सा असंख्यात है? तो फिर असंख्यात के भेद गिनाओ कि वो सबसे बड़ा सबसे छोटा, फिर बीच के और मध्य के और फलाना, अब कितने कितने भेद करो। तो उनने कह दी असंख्य लोक प्रमाण, ये शब्द अपन बार बार बोलते हैं, सब लोग ऐसा अर्थ समझते हैं कि असंख्यात लोक है ना, उनमें जितने प्रदेश होते उतने, ऐसा नहीं है यार। वो कहते असंख्य हैं कि कौन सा असंख्य? कि जो लोकाकाश के का असंख्य है, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं वो असंख्य लेना। असंख्य लोक प्रमाण माने आपके कोई करुणान योग वाले पढ़ाएंगे वो उनको ये स्वीकार नहीं होगा, अधिकांश को तो होगा, लेकिन जो मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे गले उतर रहा है ना, असंख्य लोक प्रमाण, तो ऐसे असंख्यात लोक होते और जितने उनके प्रदेश होते, क्या इतने प्रदेश हैं आत्मा में? इतना ही है ना, और वो असंख्यात वही असंख्यात है जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, इसलिए ये अर्थ बिल्कुल सही बैठता है। मैं बहस नहीं करना चाहता किसी से, लेकिन तुमको बताया असंख्य कोमा लोक प्रमाण, असंख्य बराबर लोक प्रमाण, इक्वल टू कहोगे तुम क्या कहते हो, समझ में है ना। तो वो इतने आत्मा के प्रदेश हैं, वो धर्म द्रव्य के भी इतने ही हैं और अधर्म द्रव्य के भी इतने ही हैं, और फिर काल द्रव्य का वो कभी प्रदेश ही नहीं है। ऐसा ही होता है। अभी कितनी मेहनत करी आचार्य ने, अभी अंत अंत की गाथाओं का पाठ कर रहे थे ना, अंतिम गाथा बोलो 144वीं है ना, पढ़ो कि जिसका प्रदेश नहीं हो वो पदार्थ ही नहीं हो सकता, वो द्रव्य ही नहीं हो सकता है, पढ़ो।
तुम्हें ना एक भी परदेश हो, वह शून्य ही है जगत में, परदेश बिन ना अर्थ हो।
प्रदेश के बिना पदार्थ होता ही नहीं है। एक तो आप ये समझ लो कि प्रदेश के लिए यहां परदेश लिखा है, गलती से नहीं लिखा है, वो हो जाता है ना अपना भाषा में तत्सम तद्भव ऐसे रूप बन जाते हैं ना, है? परदेश माने विदेश नहीं, क्या अपने हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान परदेश है, ऐसा परदेश नहीं, ये प्रदेश। तो वो कहते हैं कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का जो नाप किया है, अब ये सब बातें अपन समझ जानते हैं, लेकिन उनने किस भाषा में व्यक्त किया है उसमें तो वो बता रहा हूं कि परमाणु रूपी गज से प्रदेश नापे जाते हैं और फिर उन प्रदेशों से बाकी द्रव्यों के प्रदेश नाप लिए जाते हैं। कि तुमने कैसे जाना कि आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश होते वो लोक प्रमाण, लोकाकाश प्रमाण, तो लोकाकाश तो इतना फैला हुआ है और ये तो चिंती के शरीर में आ गया, हमारे तुम्हारे शरीर में आ गया आत्मा, तो इतने प्रदेश उनमें कहां फैला। तो फिर वो समझाते हैं, वो केवली समुद्घात के समय पर एक समय ऐसा आता है कि जब ये आत्मा के प्रदेश फैलते हैं तो इतने फैलते हैं कि एक दूसरे पर नहीं रहे, माने बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, फिर उनको और नहीं फैलाया जा सकता है, तब लोकाकाश प्रमाण हो जाते हैं, लोक पूर्ण हो जाते हैं ना, दंड प्रतर है ना, कपाट दंड प्रतर कपाट और लोक पूर्ण, तो लोक पूर्ण अवस्था में हो जाते हैं। अब थोड़ा और खींच दो तो अब नहीं खींच सकते, तो कहते इसका मतलब यदि और ज्यादा प्रदेश होते तो खींच जाते, और नहीं तो एक प्रदेश पर दूसरा प्रदेश रह जाता, लेकिन वहां ना एक प्रदेश पर दूसरा प्रदेश है और न उन्हें इससे ज्यादा खींचा जा सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश एक जीव के हैं, और धर्म द्रव्य के उसके भी उतने ही हैं। अधर्म द्रव्य के क्यों? कि वो यद्यपि संकोच विस्तार की शक्ति वाला नहीं है जीव जैसा, फिर भी वो सारे लोक में एकदम आकाश के एक एक प्रदेश पर अधर्म द्रव्य का एक एक प्रदेश खचित है। तो इस तरीके से असंख्य उसके हैं, असंख्य उसके हैं। अब उसमें कभी अपन बदल लें, यहां के यहां ले जाएं, वहां के यहां ले जाएं, वो दिल्ली वाला धर्म द्रव्य यहां ले जाएं, यहां वाला धर्म द्रव्य दिल्ली ले जाएं, क्यों? हो सकता नहीं, धर्म द्रव्य तो एक ही है अखंड, लेकिन उसका जो प्रदेश आकाश के जो प्रदेश पर है अनादिकाल से है और अनंत काल तक वहीं रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है वहां से उसे हटाने की। अब कहते हैं कि वो जीव और पुद्गल, अब इनकी दोनों की स्थिति कुछ थोड़ी अलग टाइप है। जीव तो वो असंख्यात प्रदेशी है और फिर जाके कम से कम प्रदेशों में भी संकुचित हो जाता है, तो उसका गमन आगमन बनता है। यदि वो भी धर्म द्रव्य जैसे ही फैल के रह जाए तो भी नहीं बने, और वो कालाणु जैसा एक आकाश के प्रदेश पर खचित होकर रह जाए तो भी नहीं बनेगा, धर्मद्रव का कोई काम ही नहीं रहेगा। धर्मद्रव की परिभाषा क्या है कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो चलने में निमित्त हो, वो स्वयं चलते हुए, उसे चलाया नहीं इनने तो वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि एक परमाणु पे खचित हो जाएगा एक प्रदेश पर तो भी नहीं चलेगा, वो असंख्य में फैल जाएगा तो भी नहीं चलेगा। अब वो जब बीच में ही रहेगा तो घटेगा बढ़ेगा, तो फिर अभी इधर है कभी इधर जाएगा, आकाश के इन सब प्रदेशों में वो कहीं भी जा सकता है ना, तो उसकी जो वो गमन क्रिया होगी, उपादान तो वो स्वयं है और धर्म द्रव्य निमित्त है। तो वो कहते वो तो धर्म द्रव्य उसकी गति में निमित्त है और अधर्म द्रव्य गति पूर्वक स्थिति में निमित्त है। वो चल रहा है फिर आगे खड़ा हो, वहीं खड़ा है तो निमित्त नहीं है, तो आकाश द्रव्य निमित्त है क्योंकि उसे रहना कहते हैं। मैं जयपुर में खड़ा हूं कि रहता हूं, जब मैं आऊं जाऊं तो वो अधर्म द्रव्य निमित्त होगा, और जब मैं वहीं का वहीं हूं तो आकाश द्रव्य निमित्त होगा। रहने में आकाश द्रव्य निमित्त है और आने जाने में धर्म द्रव्य, और गमन पूर्वक ठहरने में अधर्म द्रव्य। तो ऐसे प्रश्न आया है शास्त्र में कि दोनों तुल्य बलवान हैं, दोनों में कोई कम नहीं है, दोनों में अनंत गुण है, दोनों में असंख्यात प्रदेश है। अब एक चलाए और एक रोके ठहराए तो फिर जीव पुद्गल क्या करेंगे, चलेंगे कि ठहरेंगे। ऐसे ही शब्द पढ़ा ना तुल्य बलवत्ता, ये तुल्य बलवान है, तो उन्हें का चलाते नहीं है तो क्या कि जब ये स्वयं चल रहे हो तो वे निमित्त हो जाते हैं। जब स्वयं चल रहे तो क्या निमित्त की जरूरत है, कि होते हैं ना निमित्त, इसलिए हम बता रहे हैं। जरूरत का क्या सवाल है, हमारी दिक्कत क्या है कि हमको ऐसा लगता है यदि निमित्त है तो उसकी जरूरत रहनी चाहिए हमें, क्यों नहीं तो उसके बिना हम चल नहीं पाएंगे। यानी हमें आपको पंगु सिद्ध करना है। आचार्य ये कहते हैं कि उसमें स्वयं की शक्ति से चलता है, जब उस धर्म द्रव्य निमित्त होता है, जब वो ठहरता है तो धर्म द्रव्य निमित्त हो जाता है, न वो चलाता है न वो ठहराता है। यदि वो ठहराए और वो चलाए तो झगड़ा हो जाएगा कि धर्म द्रव्य चलाएगा अधर्म द्रव्य ठहराएगा, तो वो तो कुछ करता नहीं है, ये कैसा अकर्तापन है। जीव कहा स्वयं चलता है तो कहते कोई न धर्म चला न कोई चलाए, तो बच्चे को तो मां को उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है ना, तो कहते ऐसा पंगु नहीं है आत्मा, कोई भी जीव पुद्गल में कोई भी पदार्थ, उसे स्वयं में चलने की कल बताई थी ना कि 14 राजू चलने की बहुत बड़ी, 14 राजू माने बहुत बड़ी स्थान है, तो मैं तो कहते 14 14 मान स्थान 14 राजू नीचे से अधोलोक से लेकर और सिद्ध सरा के ऊपर तक वो सारा एरिया 14 राजू में बांटा हमने। अब कोई करुणा योग वाला कभी आपको बताएगा लंबा 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 करके, समझ में आई ना ये 14 राजू माने क्या। तो इतना जिसमें असंख्य प्रदेश है, अनंत तो नहीं कह सकते क्योंकि वो सब लोकाकाश में ही है ना, तो असंख्य प्रदेशों में, और वो बोलते चल सकता है माने इतनी तेज गति से चलता है कि एक समय में तो एक समय में कल एक बात बताई थी ना कि उसी समय वो जीव नरक में है, उसी समय मध्य लोक में है, और उसी समय स्वर्गों में है, और उसी समय समझो सिद्ध चलाना, दो तो समय लगे ही नहीं। अभी बहुत कठिन लगता है, कैसे हो सकता है? हम पुलिस में यही तो सिद्ध करते हैं, वो कहते हैं कि तुमने वहां उसकी हत्या की, कि जिस समय वो हत्या हुई उस समय तुम्हें फलाना बंबई में था, और वहां प्रमाण देते हैं अस्पताल में भर्ती था, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेरा ऑपरेशन हुआ था, ऐसे अपन देते क्या नहीं? माने एक जीव दो जगह नहीं हो सकता एक समय, ऐसा तो माने क्या रखा है, उसे हमें सिद्ध करना है। यहां तो कहते हो सकता है, अपने ही आत्मा जब लोक पूर्ण होता है तो एक समय में असंख्यात जगह रहता है कि नहीं? प्रदेश नहीं कह रहा हूं, मैं जानू जगह कह रहा हूं, क्योंकि प्रदेश में तो तुम फिर भी उस भाषा के चक्कर में फंस जाओगे। असंख्यात जगह, प्रदेश में वो जगह जगह अलग अलग है ना, तो असंख्यात जगह रहता है कि नहीं? वो बोलो, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतनी जगह है, और उसमें वही आत्मा एक ही समय में यहां भी है और वहां भी है। बोलो, बहुत गजब लगता है, ऐसा नहीं लगता? तो इसमें क्या है? देखो मेरा आत्मा है ना, तो इधर है कि नहीं? इधर भी है, और पैरों की उंगलियों में है कि नहीं? दोनों में एक साथ है। तो जब दो जगह में एक साथ रह गया तो वहां क्या दिक्कत है? अब ये ध्यान वाले हैं ना, कुछ पढ़ते मरते तो कुछ है नहीं, पढ़ने में तो उनको कुछ बोल लगता, तो कहते देखो नाक की नोक पे आत्मा का उपयोग लगाओ, नाक की नोक पे लगाओ, फिर उससे क्या होगा? मैं कहता हूं नाक की नोक पे लगाओगे तो नाक दर्शन होगा, आत्मदर्शन नहीं होगा। भाई नाक की नोक पे लगाओगे, नाक को देखोगे तो नाक दिखेगी, इसमें क्या गजब है? नहीं नहीं, वहां आत्मा के प्रदेश हैं, तो वे आत्मा के प्रदेश दिख जाएंगे। क्यों दिख जाएंगे? चर्म की चक्षुओं से है? अरे उसे देखने के लिए रूपी पदार्थ चाहिए, वो आत्मा अरूपी है, नहीं दिखेंगे वो। और यदि दिख जाएंगे तो अंगूठे में अभी तो आत्मा के प्रदेश हैं, इस उंगली में भी तो आत्मा के प्रदेश हैं, तो यहां मैं ध्यान लगाऊंगा तो क्यों नहीं दिखेगा आत्मा? यहां लगाऊंगा तो दिखेगा, यहां लगाऊंगा तो नहीं दिखेगा? अब बेचारे सब समझते नहीं है, सब ऐसे ऐसे पूछते हैं। ये हमारे विद्यार्थी जो जाने वाले हैं नहीं, जाओगे है? जो कुछ नहीं समझते हैं वे पहुंचेंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन यहां कुछ ज्यादा प्रदेश होते हैं, यहां अच्छे प्रदेश होते हैं, ये आठ प्रदेश होते हैं, मध्य के होते हैं। क्या 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 कहते हैं आपको मालूम है? ये जो आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, ये 24 घंटे ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ये 24 घंटे बहुत तेज रफ्तार से, एक समय भी नहीं रुकते हैं। वो है ना, मैं पहले तत्वासु छपा था, उसमें 60 प्रश्नोत्तर छपे थे अंत में, वो फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने लिखे थे, धवला के आधार पर ये प्रश्नोत्तर थे। तो उसमें एक प्रश्न ये था कि हमारे जो आंख है, आंख है ना, तो हम चक्षु इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम है ना, तब दिखता है, आंख से थोड़ी दिखता है। आत्मा में चक्षु इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम होना चाहिए तो दिखता है ना, और आंख भी चाहिए, निर्वृत्ति और उपकरण भी चाहिए, और लब्धि और चार चीजें चाहिए, ये इंद्रियां हैं। समझे ना? तो ये वो कहते हैं कि यदि हम ये माने, यदि आंख है यहीं पर वो है, चक्षु इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम, वो इधर नहीं है, नहीं इधर से दिख जाता, तो वो कहते हैं कि आत्मा के प्रदेश तो निरंतर घूमते रहते हैं, तो यहां वाले यहां पहुंच जाते, यहां वाले यहां पहुंच जाते, तो सभी में है भू। और जहां उसे वो मिल गया आंख वहां से दिख गया, और जहां नहीं मिली आंख में नहीं देखा। मन वही हो गया ना, भाव के साथ द्रव्यकाश सुमेल होना चाहिए, इसको निमित्त बोलते हैं। अभी अपने एक इसमें एक खिड़की है, अपने चक्कर काटे तो जहां खिड़की के पास से निकलेंगे तो बाहर की चीज दिख जाएगी, और जहां ऐसी जगह निकलेंगे दीवार है तो नहीं दिखेगी। सीधी सच्ची बात है ना। तो यहां पर वो उसमें सिद्ध किया है कि भाई आत्मा के कोई विशिष्ट प्रदेश है, उन पे ध्यान लगाओ तो हमको केवल ज्ञान हो जाएगा कि समदर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आत्मा में कोई विशिष्ट प्रदेश नहीं है, सब पूरा आत्मा अखंड एक सा ही है। वो अपेक्षाएं जुदी हैं कि मध्य के आठ और जे, और वो जो बात है ना, मध्य के आठ का मतलब क्या है समझते हो? मध्य का एक क्यों नहीं? देखो ये तीन अंगुलियां हैं तो बीच की कितने, एक है ना। अब ये चार अंगुलियां हैं, बीच की कितनी? अब एक उंगली को बीच की, इसे बीच की कह सकते हो? क्यों? इस तरफ एक है, इस तरफ दो हो गई तो बीच की नहीं रही। बिल्कुल बीच मध्य की होनी चाहिए ना, तो कहेंगे दो उंगलियां मध्य की होंगी, एक उंगली मध्य की नहीं हो सकती, दो को ही कहना पड़ेगा। अब जे ऐसे थे ना ऐसे, अब जे ऐसे क्यों? तो ऐसे गिनेंगे तो फिर दो और, तो चार उंगलियों को हम मध्य की कह पाएंगे, ऐसे समझे ना, चार उंगलियों को मध्य की कह पाएंगे। और फिर नीचे से ऊपर गिनो तो आठ उंगलियों को हम मध्य की कह पाएंगे। तो आत्मा के प्रदेश संख्या में है, समसंख्या समझते हो? दो चार आठ सम संख्या, एक तीन पांच ये विषम संख्या। तो सम संख्या में होने से उसके आठ प्रदेशों से कम को मध्य नहीं कहा जा सकता। उसको मध्य कहने के लिए कम से कम वे आठ प्रदेश चाहिए। अब कहते हैं सारे प्रदेश घूमते हैं और मध्य के नहीं घूमते हैं, तो फिर आत्मा टूट जाएगा ना, क्योंकि मध्य के घूमेंगे नहीं और बाकी के सब घूमेंगे। एक किताब ऐसी घूमे और बीच की इसमें एकदम कुछ प्रदेश नहीं घूमे तो वे कीली जैसे अलग नहीं हो जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या है मध्य के आठ प्रदेश नहीं घूमते? वो घूमते तो हैं लेकिन वो उसी जगह तो घूमे ना, यहां वाला प्रदेश तो इधर आएगा, यहां वाला इधर जाएगा, लेकिन बीच का जो प्रदेश है वो तो वहीं का वहीं घूमा, और बीच के आठ से कम होते नहीं, इसलिए उसे कहते कि वे नहीं घूमते, वैसे नहीं घूमे जैसे तुम समझ रहे हो, तो टूट जाए आत्मा और आत्मा अखंड बना रहता है। इसका मतलब ये घूमते तो हैं, वो घूमते वो कौए को नहीं घूमता कहते हैं। जैसे जी अभी आपने कहा ना कालाणु मैं कितने प्रदेश हैं कालद्रव्य में? कालद्रव्य के प्रदेश कितने हैं? वो तो नास्तिकाय है ना, अस्थिकाय ही नहीं है, अस्थिकाय माने बहु प्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं कि एक प्रदेश है उसका। तो उसे अप्रदेश ही क्यों कहते हैं? कि एक प्रदेश जिसका होता है उसे हम अप्रदेश ही कहते हैं, बस खत्म। क्यों कहते हो? कहते हैं तो उसी को हम अप्रदेशी भी कहेंगे और उसी को एक प्रदेशी भी कहेंगे। माने बिल्कुल प्रदेश होए नहीं ऐसा कोई द्रव्य होता नहीं। वो अपन ने कौन सी गाथा पढ़ी अभी 144 में, कि जिसमें प्रदेश नहीं हो ऐसी कोई वस्तु जगत में होती ही नहीं। अब वहां तो पहले कह दिया नाड़ो कि उसका कोई प्रदेश नहीं है, और फिर अभी सिद्ध करने में पसीना छूट रहा है, यानी बिना प्रदेश। अब कह रहे ये सिद्ध कर रहे तो कि तुम ही बता रहे हो, हमें तो पता नहीं था एक प्रदेशी और अप्रदेशी ऐसा ही ऐसा रूप है ना। देखिए अभी दो भाई हैं, एक तो दो है ना, तो दो भाई हुए, तीन होते तीन भाई हो जाते, चार होते चार भाई हो जाते, और एक होता तो कोई भाई भाई नहीं है। नहीं है कि एक भाई है, क्या कहने बोलो इसे, तुम दो भाई हो, ये तीन भाई हैं, ये चार भाई हैं, और इनका कोई भाई नहीं है, भाई भाई नहीं है। तो ये तो है, एक भाई तो हुए, जब दूसरा हो भाई तो वो भाई कहलाता है, माने भाई की अपेक्षा भाई होता है ना। वो भाई ही नहीं होता अपेक्षा, नहीं तो वो भाई कैसा। मैं कहता हूं ना कि पिता और पुत्र की उम्र बराबर होती है, समझ में आई, क्यों कि जब तक पुत्र नहीं है तब तक वो पिता किसका, पिता नहीं है ना, तो जिस दिन पुत्र पैदा हुआ उसी दिन बाप भी पैदा हुआ, माने बाप बाप पने पैदा हुआ, उसको बाप संज्ञा उसी दिन आई, तो एक भाई के लिए दूसरे भाई की संज्ञा चाहिए, तो दूसरा भाई चाहिए, तो भाई के बिना तुम भाई नहीं हो सकते है? तो अभाई क्या कि तुम कुछ भी कह लो उसी को एक है ऐसा कहा जाता है, और उसी को ये कहा जाता है कि भाई नहीं है। एक प्रदेश को अप्रदेशी भी कहा जाता है और एक प्रदेशी भी कहा जाता है। तो अपनी बात क्या चल रही थी, परमान पढ़ो भाई, जिस तरह परमान उसे के
गगन प्रदेश का बस उस तरह ही शेष का परमाणु रहित प्रदेश से उद्गलाणु मंद गति से चले जितने काल में रे एक गगन प्रदेश पर परदेश विरहित काल वह।
वो प्राकृत में इतना इतना सरल नहीं है पढ़ो तुम, जितनी सरल ये मैंने बना के इसमें लिख दिया है। देखो क्या लिखा है इसमें, परमाणु रहित प्रदेश। अब कहते हैं उसे अब परमाणु रूपी गैस से नापने की जरूरत नहीं है, आकाश को तो हमने परमाणु से नापा, अब आत्मा के प्रदेश को परमाणु के से नापने की जरूरत नहीं है, परमाणु से रहित जो प्रदेश है आकाश का उससे हम नाप सकते हैं। अपन इतने प्रदेश इतने प्रदेश, इतने परमाणु तो नहीं बोलते, आत्मा के असंख्य प्रदेश, आत्मा के असंख्य परमाणु तो नहीं बोलते, परमाणु के गज से नापे ही नहीं जाते हैं वो। अब कहते हैं कि ये बाकी के नप गए, आकाश भी नप गया और बाकी के द्रव्य नप गए, अब काल रह गया, ये काल को काय से नापे हैं? तो वो कहते नीचे की पुद्गलाणु मंद गति से चले जितने काल में रे एक गगन प्रदेश पर परदेश विरहित काल हुआ है। आकाश के एक प्रदेश से एक पुद्गल का परमाणु अत्यंत मंद गति से चले तो जितना समय लगे तो उतने समय को समय कहते हैं, और समय माने काल, तो वो काल कहते हैं कि इससे नापा, उसको प्रदेश से नहीं नापा, प्रदेश तो दो है ही नहीं, तो काल से नापे, क्या करने नापने की जरूरत, एक ही परमाणु का है। अब यहां पर उसे तो अपने आकाश में तो एक परमाणु रहे तो आकाश को नाप लिया, फिर इतने इतने प्रदेश ऐसे नापने में मतलब अपन ने किलो बना लिए, अब इतने किलो, अब बार बार उसकी जरूरत नहीं है, काल में आई ना। अब ये कहते हैं इसको कैसे नापें, तो ये काल से नपेगा, तो जितना काल छोट कम से कम काल, तो कम से कम काल फिर मंद गति की शर्त लगाई, तेज गति लगानी चाहिए थी ना, तो कहते एक समय में 14 राजु तक जाता है पुद्गल का परमाणु, तो वो थोड़ी समय है, समय तो वो तीव्र गति से चले नहीं और एक आकाश के प्रदेश से दूसरे आकाश के प्रदेश पे जाए। देखो सुनना, क्या क्या गजब है कि वो ही परमाणु एक समय में 14 राजू चलता है और वही परमाणु एक समय में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है, उससे समय नहीं कम नहीं लगेगा। समझ में आता ना, देखो एक प्लेन उड़ता है तो 1000 किलोमीटर एक घंटे में जाता है, समझे ना कितना जाता है। अब जब वो चलता है तो 1000 किलोमीटर जो जगह है दूरी है ना, तो उसे 2 घंटा लगते हैं, क्योंकि चढ़ने में उतरने में वो आधा आधा घंटा लगता ही है दोनों दफे, उसे मंदा करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे उतरना पड़ता है, तो 2 घंटे में तो फिर वो अपन को दिखने लगता है कि 500 किलोमीटर एक घंटे में चला, चलता तो 1000 किलोमीटर है, समझिए ना, फिर उसमें इतना समय लग जाता है। अब ये 1000 किलोमीटर चला ना तो कितने 2 घंटे में, अब 2000 किलोमीटर कितने में चलेगा, सोचो सोचो। अब तुम बहुत होशियार हो गए हो, वो मैं तुम्हें उपवास समझाता हूं ना, वैसे ही लगाओ। एक उपवास होता है 48 घंटे में, वो 2 हो जाते हैं 72 घंटे में हो जाते ना, फिर 48 नहीं लगते। तो जब वो चढ़ने उतरने का जो समय है वो 1000 किलोमीटर दूर जाएगा उसको भी उतना ही लगना है, और जो 2000 किलोमीटर जाएगा उसको भी उतना ही लगना है। तो अब ऐसे बढ़ते जाओगे, समझे ना, तो आपका फिर गणित बैठेगा नहीं, इसमें लग गए 2 घंटा तो उसमें 3 क्यों लगे, 4 लगना चाहिए। और फिर हम 15-16 घंटे में अमेरिका पहुंचे मान लीजिए, तो वो चढ़ने उतरने के तो वही आधे ही आधे घंटा है, तो 16 जगह बढ़ जाएंगे हैं, तो वही 1000 किलोमीटर की रफ्तार दिखने लगेगी हैं। 16 घंटा लगे तो 14000 किलोमीटर है, आंकड़े सही में समझना है। आंकड़े पूछना हो तो प्रणाली वालों से पूछना, कि उन लोग वैज्ञानिकों से पूछना, मैं तो उदाहरण से समझाता हूं कि आपकी बात समझ में आ गई ना। वो तो चढ़ने उतरने का जो काल वो तो बराबर ही लग रहा है ना, तो वो एक प्रदेश में जाए तो भी एक समय लगना है, और 14 राजू जाए माने अनंतानंत प्रदेश तो भी एक समय, कैसा हिसाब है भाई। तो जब वो 14 राजू जाता है तो एक समय में गया ना, तो एक समय में 14 राजू गया तो यहां से और वो 1 किलोमीटर तक ऊपर गया, वो कितने समय में गया बोलो, तो एक समय में, आप समझना, वो एक ऊपर गया, परमात्मा समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं, एक समय प्रदेश ऊपर गया तो भी एक समय में, और 14 राजू गया तो भी एक समय में, कैसी विचित्र सामर्थ्य है। समय नहीं बढ़ता है, अरे वो जी है, तो अभी इसलिए उन्हें मंद गति लिखना पड़ा कि मंद से मंद गति, तीव्र नहीं लिखी, तीव्र तो इतनी ज्यादा है, तो वो ऐसा गणित मत लगाना तुम, उसका तुम टुकड़ा कर दोगे, यदि तुम ज्यादा तीव्र गति से चलाओगे तो टुकड़ा कर दोगे। तो वो सबसे मंद गति कौन सी है कि जब वो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में जाता है तब वो उसकी मंद सबसे मंदई गति होती है, क्योंकि उसे इतना समय तो लग नहीं लगना है, तो असली वो समय है। तब कहोगे साहब वो 14 आदमी गया उसको भी एक समय कहो, एक समय में चला गया लेकिन समय नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से जीव असंख्य समय में भी जाते हैं 14 राजू, समझ गए ना। दूसरे दुर्गा नानू तो वो परिभाषा नहीं बन सकती है, परिभाषा वो सबसे मंद गति से चले वो ही परिभाषा बनेगी। तो इस तरह से देखो अपन अभी पढ़ लेते हैं, जितना इसमें इसका अर्थ है वो मैंने सब बता दिया है, तो पढ़ लेंगे, तो एक आध बात आएगी बीच में तो बोलेंगे। आचार्य कुंदकुंद 144वीं गाथा में स्वयं कहेंगे कि आकाश के एक प्रदेश का लक्षण एक परमाणु से व्याप्त होना है। और यहां इस गाथा में जिस प्रकार आकाश के प्रदेश हैं, उसी प्रकार शेष द्रव्यों के भी प्रदेश हैं। इस प्रकार प्रदेश के लक्षण की एक प्रकारता कही जा रही है। प्रदेश को एक प्रकार से प्रदेश का स्वरूप समझाया। जिस प्रकार एक परमाणु से व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर आकाश अनंत प्रदेश ही है। अब उसको हमने एक परमाणु घेरी थी जगह, अब उसको हमने इकाई मान लिया। अब हम कह रहे हैं कि आकाश के कितने प्रदेश हैं तो अनंत। जैसे हमने एक बोरी में गेहूं थे तो उस बोरी के एक गेहूं एक किलो से नाप लिए, एक किलो को तोल के बना लिया कि ये एक किलो है। अब हमें वो किलो नहीं होए तो अभी उन गेहूं से हम बाकी के गेहूं नाप सकते हैं, एक एक किलो है। एक प्रदेश को हमने इकाई बना लिया तो हमने असंख्य प्रदेश, अनंत प्रदेश जो हमने ये कह गए तो वो प्रदेश की इकाई बन गई, तब हमने ये बात कह पाई। ऐसे ही काल की इकाई बन गई समय, तब हम ये कह पाएंगे, है ना। जिस प्रकार एक परमाणु का व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर आकाश अनंत प्रदेश ही है, उसी प्रकार एक परमाणु से व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात अंश होने से वे सभी असंख्यात प्रदेशी हैं। अभी आपको लगेगा वो सीधी कह देते ना कि उसे असंख्यात हैं, एक एक परमाणु के व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर ये क्या चक्कर है, इसका अर्थ समझ में आता है। जिस प्रकार एक परमाणु के व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर ये क्या कह रहे हैं, पर यही तो कठिन लग जाता है। आश्रम मिले थे मुझे सोगानी थी, फिर बता रहे थे कि मैं तो अमरचंद को नहीं समझता हूं, मैं तो सिर्फ कुंद कुंद की बात करता हूं, बस कुंद कुंद की गाथा समझ ली बहुत है। अमरचंद तो बहुत महान थे, इसलिए मैं छोड़ दिया हूं। देखो अब ये क्या है, अब ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, इतनी बात जबरदस्ती आदि लेन का ठोक दी इसमें, इसके बिना ठोके भी काम चल सकता था, ऐसा वाक्य अपन बना सकते हैं अभी बना तो इसने क्यों, वो ये कह रहे एक परमाणु में व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर, वो याद दिला रहे कि हमने एक परमाणु में एक प्रदेश का नाप निकाला था, उस नाप को तुम मुख्य रखना तो ये हिसाब बैठेगा। ये याद दिला रहे वो, ये उस परमाणु को गिनना जो वो परमाणु था, समझे ना, और हमने उससे इसका नाप किया था, उसे प्रदेश मानना, और हम बल बोले कि इतने प्रदेश तो उसके उतने परमाणु गए, गज से नापा गया जो आकाश का एरिया था उसको इकाई मान करके बात समझना। इसलिए देखो दोनों में अंश से व्याप्त गिने जाने पर ये, उसी प्रकार एक परमाणु से व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर, एक परमाणु जितने में व्यापा था उतना आकाश का अंश लेना, उसका हमने नाम प्रदेश रखा है और वो हमारी इकाई है, वो हमारे द्रव्यों को नापने का गज है। अपने बढ़िया दुकानदारी करते हैं ना तो जो कपड़ा बेचते हैं वे मीटर रखते हैं, और जो परचूनी की दुकान होती गेहूं दाल बेचते हैं वे किलो से रखते हैं ना, और उससे फिर तोल तोल के सब चीजें देते हैं। तो वो इकाई हमारी समझ में आने चाहिए ना। हम धंधा करने बैठे और ये हम कहें मीटर के क्या होता है, मीटर आधा मीटर के क्या होता है आधा मीटर, तो हम नहीं कर सकते धंधा, वो जानना चाहिए ना। तो हमें सारे जगत की लंबाई चौड़ाई को जानना है, जीवों की लंबाई चौड़ाई को जानना है, तो हमें वो प्रदेश नाम का जो गज है उसे पहचानना चाहिए, मीटर है उसे पहचानना चाहिए। अब वो कैसे पहचाने कि परमाणु से पहचानो, और परमाणु को कैसे पहचाने ये पुष्कर का सबसे छोटा अंश। अब वो तो खुद ही पूरा द्रव्य है, जिसे अपन अंश कह रहे हैं। अंश क्या है? वो किसी का। अब इसमें एक विशेषता और है कि उसमें दूसरे परमाणुओं से मिलने की शक्ति है, स्कंद बनने की शक्ति है। इस अपेक्षा से उसे हमने अस्थि काय में भी ले लिया। लिया तो व्यवहार से है, फिर भी व्यवहार को मुख्य करके पंचास्थि काय नाम रख दिया। चार ही अस्थि काय नाम रखना चाहिए था निश्चय के हिसाब से। तो जिस प्रकार सुनिश्चित प्रमाण वाले धर्म और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं, उसी प्रकार संकोच विस्तार के कारण अनिश्चित प्रमाण वाले जीव के भी सूखे गीले चमड़े के समान निज अंशों का अल्प महत्व नहीं होता, इस कारण असंख्यात प्रदेशी पना ही है। अब ये क्या कह रहे हैं? तुम कह रहे हो कि धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी और जीव भी असंख्यात प्रदेशी। अब चक्कर ये है कि जीव तो इतने में सिमट गया और वे तो सिमटते ही नहीं है। फिर इसमें दो शब्द पड़े हैं, देखो संकोच विस्तार की सिद्धि है, कहां है? अनिश्चित प्रमाण वाले जीव और निश्चित प्रमाण वाले। सुने देखो, जिस प्रकार सुनिश्चित प्रमाण वाले परमात्म में ना देख रहे हैं, समझ में आए? ऐसे देखना चाहिए, नहीं तो बाद में याद नहीं रहेगा। सुनिश्चित प्रमाण वाले धर्म और अधर्म द्रव्य, ये सुनिश्चित प्रमाण वाले हैं, वैसे ही रहेंगे अनादि से अनंत काल तक। और ये अनिश्चित प्रमाण वाला जीव और बाकी सारे विशेषण दोनों में समान है, और ये विशेषण बदल गया है। वो तो धर्म द्रव्य तो जिस आकार में है उसी आकार में रहेंगे, सुनिश्चित प्रमाण। प्रमाण माना लंबाई चौड़ाई और सुनिश्चित। और ये इसका कभी इतना कभी इतना कभी इतना एक एक मिनट में बदलता है। तो कहते जिस प्रकार सुनिश्चित प्रमाण वाले नापे जाते हैं ना प्रदेश से, उसी प्रकार जीव को भी उसी प्रदेश से नापो, उसी गज से नापो। माने भले ही मनुष्य के शरीर में है इतनी जगह में ही है, तो भी इसको तुम कम प्रदेश वाला मत मान लेना। कितना प्रदेश वाला मानना? असंख्यात प्रदेश वाला। कौन सा असंख्यात? वे लोक में जो व्याप्त हैं धर्म अधर्म द्रव्य, जितने प्रदेश वाले वे हैं उतने ही प्रदेश वाला तुम्हारा जीव है, भले ही वो कम जगह घेर रहा हो। तो सुनिश्चित प्रमाण वाले और अनिश्चित प्रमाण वाले, और बाकी दोनों पूरा वाक्य एक से है। अर्थ अमूर्त पदार्थ के संकोच विस्तार की, क्यों घड़ी तो ठीक है ना, ये गड़बड़ तो नहीं है, अभी नहीं हुआ ना समय है? मैं भूल गया हूं मैंने कब शुरू किया था। अमूर्त पदार्थ के संकोच विस्तार की सिद्धि तो अपने अनुभव से ही साध्य है। वो चमड़े का उदाहरण दिया था, चमड़ा कहां चला गया? गीला और सूखा, सूखा चमड़ा होता है तो खिंचता नहीं है, गीला चमड़ा होता है तो खिंच जाता है रबड़ जैसा। तो जैसे उसके प्रदेश संकोच और विस्तार को पा जाते हैं, सूखे के नहीं पाते हैं, ऐसे ही जीव के प्रदेश गीले चमड़े की भांति विस्तार को पा जाते हैं और संकोच को हो जाते हैं, और किसके? धर्मदेव के सूखे चमड़े की भांति विस्तार को प्राप्त नहीं होते हैं। सूखे चीला गीला चमड़ा न पट गया। अब कहते हैं कि कैसे कैसे मान लें हम, कैसे मान लें कि ये फैल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं? अनुभव से सिद्ध है, लिखा ना। देखो अमूर्त पदार्थ संकोच विस्तार की सिद्धि तो अपने अनुभव से ही साध्य है। अपने अनुभव से देख लो तुम फैल जाते हैं, हैं? क्योंकि यह तो सभी स्वानुभव से जानते ही हैं कि जीव स्थूल और कृष शरीर में बालक और कुमार के शरीर में व्याप्त होता है। ये तो अपन दिनदानात देखते हैं। अपन मोटे हो जाते हैं तो बाद में प्रदेश फैल जाते हैं, दुबले हो जाते हैं तो वे सिकुड़ जाते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, वे कोई शिकायत नहीं करते हैं, है? तो बहुत सरल भाषा है कि नहीं है? कठिन तो नहीं है, लेकिन ईमानदारी से कहो कि तुम घर पर शांति से पढ़ते तो ये पूरा बात ख्याल में आ जाती है? नहीं आती। क्यों नहीं आती? भगवान जाने उपयोग में उतनी एकाग्रता हम नहीं लगा पाते, इसलिए नहीं आती है। और कोई खास बात नहीं है, मैं कुछ इसमें नमक मिर्च तो नहीं डाल रहा हूं, कोई उदाहरण उदाहरण भी नहीं दे रहा हूं, जो दिया है इसमें वही दे रहा हूं, वही समझा रहा हूं, मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। पुद्गल तो द्रव्य की अपेक्षा एक प्रदेशमय होने से पहले कहे अनुसार अप्रदेशी ही है। अप्रदेशी माने एक प्रदेशी है ना, तथापि दो अनेक प्रदेशों के उद्भव के हेतुभूत उस प्रकार की स्निग्ध रूक्ष गुण रूप परिणमित होने की शक्ति रूप स्वभाव के कारण उसके प्रदेशों का उद्भव होता है। प्रदेशों का उद्भव होता है माने स्कंद बनते हैं, माने पुद्गल के परमाणुओं में यद्यपि वो ही पोजिशन है, ये कई प्रदेश ही है, लेकिन वे दोनों चिपक करके अनंत पुद्गल परमाणु एक साथ एक क्षेत्र में आ जाते हैं तो उनका स्कंद बन जाता है, तो फिर वो कितने कितने परमाणु सिमट के आ जाते हैं, बोलो संख्यात असंख्यात अनंत लिखा ना सूत्र तत्व सूत्र का संख्या संख्याश्च पुद्गला नाम आकाश से अनंता है? और संख्या संख्याश्च पुद्गला नाम क्या अर्थ है इसका, जल्दी मत करो सोच लो, फिर मैं पूछता हूं एक एक का नाम लेके, सभी एक साथ बोलोगे तो पता ही नहीं चलेगा, पूछूं क्या नहीं पूछूं बता दूं। आकाश से अनंता, आकाश के अनंत हैं, और संख्या असंख्याश्च पुद्गला नाम, और पुद्गल के हाँ अनंत क्या अनंत लिखा ही नहीं सूत्र में, वो चा लिखा, चा माने अनंत होता है, माने और तो और से कैसे लग गए, इसलिए लग गए कि पिछला सूत्र में आकाश के अनंत प्रदेश बताए और पुद्गल के अनंत असंख्य और संख्य प्रदेश होते हैं, माने उसका स्कंद ऐसे बन जाता है, पुद्गलों के इस तरह से प्रदेश होते हैं, तो इन्होंने सभी द्रव्यों के प्रदेश बता दिए ना। अब देख अपन को मालूम थे ना, तत्वा सूत्र में पढ़ लिए थे, छैडाला में पढ़ लिए थे, सब जगह पढ़ लिए थे, लेकिन अब अमृतचंद की भाषा में अपन को एक दफे पढ़ने थे तो अपन को पंचासी बड़ा कहलाता, उन्हें तो पंचायत मैंने बोला ना पूरा ये अधिकार एक पेज में बहुत अच्छी तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा तो तुम ज्यादा बड़े विद्वान हो गए और उनने नहीं लिख पाया, क्यों यही बात है क्या है ये भाई, उनका भी एक ही पेज है, मूल गाथाएं कितनी है, आठ दस गाथाएं होंगी तो बीस लाइनें हुई, पेज में तो छब्बीस लाइनें हैं, समझ में आया कि नहीं है, उनने भी तो उतनी जगह ली है, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, उनने भी उतने में बताया, हम भी उतने में ही बता देते, उसमें क्या है, अब उस विस्तार में खोल खोल के कह रहे तो इतनी सी बात है, इतना फैल गया, नहीं तो फैलने को क्या है, बिल्कुल सहज है सरल है, और बहुत अभी अपने दो गाथाएं निपट गए, अभी अपने ने नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो मेरी और है इसका संपूर्ण कथन का संक्षिप्त सार यह है, तुम पढ़ लेना, जो मैंने बोला है वही का वही सब लिखा है, मैं कल नहीं पढ़ूंगा, अब कल तो अपना वो दूसरा मामला चलना है, और फिर ये 139वीं गाथा कब चलाएंगे, 1 मार्च को।